ये रेडियो नेपाल है। अब मीनू प्रधान से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के समक्ष प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड सहित 8 मंत्रियों ने ली पद तथा गोपनीयता की शपथ। देश की जटिल और चुनौतीपूर्ण अर्थतंत्र में सुधार कर प्रभावकारी ढंग से आगे बढ़ने का नवगठित मंत्रिपरिषद ने किया निर्णय। पड़ोसी देशों चीन और भारत में दिख चुके कोरोना वायरस के BF7 वेरियंट के नेपाल में भी फैल सकने के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी से बूस्टर डोज लगवाने का किया आग्रह। और अमेरिका में बर्फीले तूफान ने मचाई तबाही, 48 की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड ने सिंह दरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। इसी तरह नवनियुक्त उप प्रधानमंत्री तथा अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौड़े ने भी पदभार ग्रहण किया। इसी क्रम में नवनियुक्त उप प्रधान एवं भौतिक पुराधार तथा यातायात मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ ने भी सिंह दरबार स्थित भौतिक पुराधार तथा यातायात मंत्रालय में पदभार ग्रहण किया। आज ही नवनियुक्त उप प्रधान एवं गृहमंत्री रवि लामिछाने ने भी सिंह दरबार स्थित गृह मंत्रालय में पदभार ग्रहण किया। इससे पहले राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के समक्ष नवनियुक्त प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड सहित 8 नवनियुक्त मंत्रियों को पद तथा गोपनीयता की शपथ ली। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में आयोजित विशेष समारोह में राष्ट्रपति भंडारी द्वारा शपथ ग्रहण करने वालों में प्रधानमंत्री प्रचंड सहित उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौड़ेल, उप प्रधान एवं भौतिक पुराधार तथा यातायात मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ और उप प्रधान एवं गृह मंत्री रवि लामिछाने शामिल हैं। इनके अलावा बिना विभागीय मंत्रियों दामोदर भंडारी, ज्वाला कुमारी साह, राजेंद्र राय और अब्दुल खान ने पद तथा गोपनीयता की शपथ ली। इनके कार्यभार बाद में तय किए जाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन, निवर्तमान प्रधानमंत्री शेर बहादुर देववा, राष्ट्रसभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा, सुप्रीम कोर्ट के कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की उपस्थित थे। इसके अलावा विभिन्न दलों के शीर्ष नेताओं सहित मंत्रिपरिषद के पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मी भी शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे। नवनियुक्त प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड ने लैनचोर स्थित शहीद स्मृति स्मारक पहुंचकर शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में नेपाल के 44वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद नवनियुक्त प्रधानमंत्री प्रचंड शहीदों को श्रद्धांजलि देने लैनचोर गए थे। मंत्रिपरिषद की पहली बैठक ने देश की जटिल और चुनौतीपूर्ण अर्थतंत्र में सुधार कर प्रभावकारी ढंग से आगे बढ़ने का निर्णय किया है। सिंह दरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में हुई बैठक ने जनता की समस्याओं को कम करने और सुशासन अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने का निर्णय किया। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड ने कहा कि नागरिकों को सुलभ ढंग से सेवा प्रवाह की जाएंगी। इसके अलावा पासपोर्ट और लाइसेंस बनाने के दौरान सेवाग्राहियों को मिलने वाली समस्याओं के मद्देनजर इन समस्याओं के निराकरण के लिए भी काम किए जाएंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचंड को अमेरिका ने बधाई और शुभकामना दी है। नेपाल के लिए अमेरिकी राजदूत डीन आर थॉम्सन ने ट्वीटर के जरिए बधाई दी। ट्वीटर में उन्होंने लिखा है, नेपाल और अमेरिका के बीच 75 वर्ष लंबी साझेदारी को और सुदृढ़ करने और लोकतंत्र, मानवाधिकार व आर्थिक वृद्धि के लिए मिलकर काम करने को अमेरिका आतुर है। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड ने प्रधानमंत्री के सरकारी निवास बालोटार में कोई भी विलासी सामान न खरीदने का निर्देश किया है। प्रधानमंत्री प्रचंड के स्वकीय सचिव रमेश मल्ल के अनुसार प्रधानमंत्री प्रचंड ने कोई भी नया और विलासी सामान न खरीदने का निर्देश किया है। नवनियुक्त उप प्रधान एवं गृहमंत्री रवि लामिछाने ने प्रतिबद्धता जताई है कि वे किसी के दबाव और प्रभाव में नहीं आएंगे और दृढ़तापूर्वक देश में शांति व व्यवस्था को बहाल करेंगे। सिंह दरबार स्थित गृह मंत्रालय में आज शाम को पदभार ग्रहण करने के बाद संचार कर्मियों की जिज्ञासा पर उप प्रधान एवं गृहमंत्री लामिछाने ने ये बात कही। उन्होंने आगे कहा कि किसी के दबाव और प्रभाव में आए बिना काम करने के प्रधानमंत्री के निर्देश के प्रति वे प्रतिबद्ध हैं। मंत्री लामिछाने ने कंचनपुर की नाबालिग किशोरी निर्मला पंत की हत्या की छानबीन और प्रभावकारी बनाने का निर्णय लिखकर लाने का मंत्रालय के उच्च अधिकारी को निर्देश किया। मंत्रालय में उनका स्वागत गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंह और सुरक्षा निकाय के प्रमुख ने किया था। सरकार के कानूनी सलाहकार खम बहादुर खाती ने महान्याय अधिवक्ता पद से इस्तीफा दिया है। महान्याय अधिवक्ता खाती ने प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल प्रचंड को अपना इस्तीफा सौंपा। मध्य प्रदेश सभा सदस्य पुष्प 15 गते दोपहर 2 बजे पद तथा गोपनीयता की शपथ लेंगे। प्रदेश सभा में आज हुए सर्वदलीय बैठक ने यह निर्णय किया। ये जानकारी प्रदेश सभा सचिवालय के सचिव रंजित कुमार यादव ने दी। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा के छ हाल खबर, पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु, हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415 हैश डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। निवर्तमान अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा ने कहा है कि चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 में आर्थिक वृद्धि दर 6% से ऊपर रहेगी। आज मंत्रालय में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में निवर्तमान अर्थमंत्री शर्मा ने कहा कि इस साल अर्थतंत्र गंभीर मोड़ से जरूर गुजरा है, लेकिन अब धीरे धीरे संभल रहा है। उन्होंने कहा कि भूकंप के बाद की प्रतिकूल स्थिति, कोविड-19 की महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण बाह्य क्षेत्र से आए दबाव लगाए का सामना करने के विषय को पिछली सरकार ने प्राथमिकता में रखा था। उन्होंने आगे कहा कि आर्थिक वृद्धि दर लक्षित बिंदु पर भले ही न पहुंचे, लेकिन 6% से ऊपर ही रहेगी। गृह मंत्रालय ने गृह प्रशासन सुधार कार्य योजना 2078 स्वीकृत कर जिला प्रशासन कार्यालयों के सूचक पर आधारित एकीकृत अनुगमन तथा मूल्यांकन ढांचा के अनुरूप कार्य संपादन को और अधिक प्रभावकारी बनाया है। आज मंत्रालय में आयोजित निवर्तमान बालकृष्ण खान की विदाई कार्यक्रम में मंत्रालय ने बताया कि 28 जिला प्रशासन कार्यालयों के सूचक पर आधारित एकीकृत अनुगमन तथा मूल्यांकन ढांचों का अनुगमन कर कार्य संपादन को और अधिक प्रभावकारी बनाया गया है। इसी तरह शिनाख्त होना बाकी और लावारिश शव व्यवस्थापन निर्देशिका 2078 को नेपाल सरकार मंत्री परिषद द्वारा स्वीकृत कर क्रियान्वित किया गया है। इसके अलावा इलाज खर्च, राहत तथा आर्थिक सहायता संबंधी मापदंड 2079 मंत्री परिषद द्वारा स्वीकृत होकर क्रियान्वयन के लिए सभी जिला प्रशासन कार्यालयों में भेजे जा चुके हैं। नेपाल सरकार ने उन नागरिकों को भी वैक्सीन देने की तैयारी की है जो कि बूस्टर डोज लगवा चुके हैं। ये जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने दी है। मंत्रालय के प्रवक्ता डॉ संजय कुमार ठाकुर ने कहा कि नेपाल में अब तक BF7 वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पड़ोसी देशों भारत और चीन में इसके केस बढ़ते जा रहे हैं, जिसके मद्देनजर नेपाल में एहतियातन सभी को बूस्टर डोज लगवाने का आग्रह किया गया है। निवर्तमान संचार तथा सूचना मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की ने कहा कि वे जनादेश के अनुसार ही भूमिका निर्वाह करेंगे। आसिंग दरबार स्थित मंत्रालय में आयोजित विदाई कार्यक्रम में निवर्तमान मंत्री कार्की ने कहा कि बदलते राजनीतिक परिस्थिति को आत्मसात करते हुए जनादेश के अनुसार ही उनकी पार्टी संसद में भूमिका खेलेगी। मौके पर मंत्रालय के सचिव डॉ बैकुंठ अरियाल ने कहा कि मंत्री कार्की के कार्यकाल में 95% काम डिजिटल होना प्रविधि मैत्री सरकार की सफलता को दर्शाता है। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन थापा ने कहा कि नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्ष में रहकर उत्कृष्ट भूमिका निर्वाह करेगी। पोखरा में जारी नेपाल लिटरेचर फेस्टिवल में थापा ने कहा कि कांग्रेस अब पार्टी संगठन में केन्द्रित होकर काम करेगी और गांव-गांव में जाकर पार्टी संगठन को सशक्त बनाएगी। भारत सरकार बथनाहा कटहरी रेलमार्ग नेपाल सरकार को हस्तांतरित करेगी। ये जानकारी रेल विभाग के प्रवक्ता अमन चित्रकार ने दी। उन्होंने बताया कि भारतीय सीमा स्थित भंसार बिंदु से नेपाल की ओर से 8 किलोमीटर रेलमार्ग का निर्माण कार्य संपन्न होने के कारण नेपाल सरकार को हस्तांतरित करने की तैयारी की जा रही है। अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर जारी है। देश के 50 में से 48 राज्यों के 20 करोड़ से ज्यादा लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अब तक तूफान से जुड़ी घटनाओं में 48 लोगों की मौत हो चुकी है। इसका सबसे ज्यादा असर न्यूयॉर्क, नॉर्थ कैरोलिना, वर्जीनिया और टेनेसी में है। 4 दिन से जारी भारी बर्फबारी से कई शहरों के हालात बदतर हो गए हैं। लोग घरों, कारों और रेस्तरां में कई घंटों से फंसे हुए हैं। सड़क, रेल और हवाई यातायात पूरी तरह से ठप हो गए हैं। 4 दिन में अमेरिका में 12,000 फ्लाइट कैंसिल की जा चुकी हैं। इस तूफान का असर अमेरिका के अलावा कनाडा में भी है, जहां भारी बर्फबारी के कारण बस फिसलकर पलट गई। इस हादसे में अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है। तूफान से बिजली की लाइनों का नुकसान हुआ है। कई शहरों में बिजली गुल है। कई शहरों में तापमान शून्य से -42 डिग्री तक पहुंच गया है। इधर कनाडा में तूफान से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। मैक्सिको में भी तूफान का असर देखा जा रहा है। वहीं न्यूयॉर्क स्टेट के शहर बफेलो में 8 फीट बर्फ की चादर बिछ गई है। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात भी देखे गए हैं। अब मौसम अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के समक्ष प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल प्रचंड सहित 8 मंत्रियों ने ली पद तथा गोपनीयता की शपथ। देश की जटिल और चुनौतीपूर्ण अर्थतंत्र में सुधार कर प्रभावकारी ढंग से आगे बढ़ने का नवगठित मंत्रिपरिषद ने किया निर्णय। पड़ोसी देशों चीन और भारत में दिख चुके कोरोना वायरस के BF7 वेरियंट के नेपाल में भी फैल सकने के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी से बूस्टर डोज लगवाने का किया आग्रह। और अमेरिका में बर्फीले तूफान ने मचाई तबाही, 48 की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। शुभरात्रि।